Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Pujya Maharaj ke Punit Charanon mein Vandan. Bahut hi anand ki baat hai. और आज हमारे बीच में प्रातः प्रवचन के माध्यम से तैतृय उपनिषद द्वारा पूज्य महाराज जी प्रवचन करेंगे. सभी बड़े आनंद से इनके प्रवचन का लाभ लेंगे. आप सबकी तरफ से हम माल्यार्पण की एक विधि करेंगे और महाराज जी को वंदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे.
हरि ओ
उपनिषद के माध्यम से चर्चा करनी है. सर्वप्रथम मंगलाचरण. किसी भी कार्य से पूर्व में मंगलाचरण करना आवश्यक है. क्यों आवश्यक है तो संकेत किया गया. मंगल शब्द का अर्थ ही होता है मगम, पापम, दुरितम, लुनातीत मंगलम. जो हमारी बाधाओं को, हमारी विघ्नों को, हमारे दुरितों को नष्ट करता है, ऐसी स्तुति का नाम है मंगल. उस मंगल का आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता. तो यहां पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया उसको देखें, उसके बाद उपनिषद संबंधी चर्चा की जाए. तो यहां पर मंगलाचरण करते हुए संकेत किया गया सर्वा आशा ध्वांत निर्मुक्तम सर्वासा भास्करम परम चिदाकाशवतंसम तम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम. यहां संकेत किया कि चिदाकाश अवतंसम तम गुरुम प्रणामि अहम। तो संकेत किया चिदाकाश अवतंसम, जो चिदाकाश। अब आकाश शब्द का अर्थ तो सभी जानते हैं, आकाश क्या है, तो अवकाश का नाम ही आकाश है, या शून्यता का नाम ही अवकाश, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूं कह सकते हैं सर्व विशेषों से रहित का नाम ही है आकाश। तो सर्व विशेषों से रहित जो आकाश, फिर ऐसा संकेत किया, अथवा दूसरी तरफ से संकेत करते हैं आसमंता काशते प्रकाशते इति आकाश, जो सम्यक रूप से प्रकाशित हो रहा है उसी का नाम है आकाश। अब जो प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाशित होने वाला कोई जड़ नहीं होगा, क्या होगा, चैतन्य होगा, इसलिए नाम रखा चिदाकाश। लेकिन वो चिदाकाश कैसा है, तो संकेत किया सर्व विशेषों से रहित, सर्व विशेषों से रहित जो चिदाकाश हो। तो सर्व विशेषों से रहित कौन है, तो इसलिए शास्त्र ने शब्द दिया परब्रह्म। तो परब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ आप लोग जानते हो, जो व्यापक तत्व है, वृह धातु जो है वर्धन अर्थ में है, तो जो व्यापक है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत रूप है, ऐसा जो ब्रह्म, और वो ब्रह्म भी कैसा है, पर का मतलब है जहां पर कोई भी विशेष का संबंध नहीं, सारे विशेषों से जो रहित है उसका नाम ही है परब्रह्म। तो परब्रह्म कहें या चिदाकाश कहें, तो ऐसा जो चिदाकाश, ऐसा जो परब्रह्म, वह चिदाकाशी अवतंसम क्या हुआ है, तो कहने लगे वही जो है अवतरित हुआ है। कैसा हुआ है, अवतरित हुआ है, अर्थात अवतरित हुआ है माने उसने विशेषों को स्वीकार किया, वही जो निर्विशेष है, वही निर्विशेष जो है विशेष वाला बना हुआ है, ऐसा जो निर्विशेष से विशेष होने वाला जो चिदाकाश या परब्रह्म, वही क्या है, तो कहने लगे वो और कोई नहीं है तम गुरु, वही क्या है, कहा गुरु, ऐसे उस गुरु को अहम प्रणामी, मैं नमस्कार करता। अब कैसा गुरु है, तो संकेत कर दिया, इसलिए आप आचार्य शंकर की स्तुति में बोलते हो गुरु रात में दी। गुरु क्या है, तो संकेत क्या किया, आत्मा इति गुरु, आत्मा ही क्या है, गुरु है। क्यों आत्मा गुरु है, और फिर आगे मूर्ति भेद विभाग ने करके कर दिया उसको, आत्मा को गुरु क्यों कहा, तो गुरु शब्द का अर्थ भी आप लोग सुनते रहते हो, ग्री ग्रात अर्थ में धातु से गुरु शब्द बनता, जो निग्रण कर लेता है या निवारण कर देता है उसका नाम क्या है, गुरु। तो गु और रू को लेकर के ही कहा जाता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो प्रकाश अंधकार का निवारण कर दे, जो प्रकाश हमारे विशेषों को हटा दे, विशेषों से रहित कर दे, उसे क्या कहते हैं, गुरु। तो विशेष बनकर के विशेषों का राहित, क्योंकि नियम है कंटके नैव कंटकः कीर्णः, कांटे से ही कांटा निकलता। लेकिन वहीं पर एक वैशिष्ट्य और है, जिस कांटे को निकाला गया वो कांटा क्या था, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए, कष्ट के निवृत्ति के लिए उस कांटे को हमने निकाला। लेकिन कांटे को निकाला किसके द्वारा? तो कहा कांटे के द्वारा। तो कहने लगे जिस कांटे के द्वारा निकाला उसे उपयोगी मान लो, वो तो उपादेय हो गया, तो उसको क्या सुरक्षित रखते? कांटे से कांटा निकाल करके और उस कांटे को भी फेंक देते हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर संकेत करते हैं कि जिस विशेष को लेकर के जिन विशेषों की निवृत्ति की गई, तो जिस विशेष से निवृत्ति की गई है ऐसे विशेष का भी त्याग कर देना। जैसे आप देखते हो अग्नि प्रज्वलित होती है तो किसको लेकर के होती? ईंधन को लेकर, लकड़ी को लेकर, और लकड़ी को लेकर के जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो कैसी हुई? विशेष अग्नि हो गई। लेकिन विशेष अग्नि ने क्या किया? जो लकड़ी आदि उपाधि विशेष थे उनको भस्म कर दिया, और उनको भस्म करके क्या वो अग्नि शेष रह गई? जो विशेष अग्नि थी वह अग्नि भी शांत हो जाती, उन विशेषों को शांत करके वह विशेष भी शांत हो जाता, फिर जो सामान्य अग्नि है वह अग्नि व्यापक रहती है। तो इसी प्रकार से यहां भी संकेत करते हैं, यहां जो चिदाकाश करके जिसका संकेत किया और फिर इसे विशेष रूप से अवतन शब्द से कह दिया, तो वह प्रकाश क्या करता है? हमारे उन उपाधिकृत विशेषों को समाप्त करके और स्वयं भी समाप्त हो जाता। इसलिए आचार्य शंकर क्या कहते हैं? गुरु नैव शिष्य, न गुरु है और न शिष्य। लेकिन जब तक कंटक है और दुख दे रहा है तब तक उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो गुरु, जो कैसा है? जो है तो चिदाकाश, लेकिन चिदाकाश होकर के जो क्या है, एक विशेष रूप में मूर्त के रूप में जो हमारे यहां एक उपाधि को समन्वित होकर के उपहित होकर के है, ऐसे उस गुरु को। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुरु शब्द का तात्पर्य यह हुआ कि जो स्वयं आत्मज्ञ है, ऐसे उस आत्मज्ञ गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये संकेत की किस लिए नमस्कार करते हो? तो उसी को संकेत ऊपर कर दिया। वो गुरु क्या है? तो सर्वासा भास्कर, संपूर्ण आशाओं को, संपूर्ण कामनाओं को प्रकाशित करने वाला, उसके बगैर कोई कामना प्रकाशित भी नहीं हुई। तो सारी कामनाओं को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करके क्या करता है? ध्वान्तम, उन सारी आशाओं को प्रकाशित करते हुए उन आशाओं को मने क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उनका अंत कर देता। और उनका अंत जब कर देता है तो क्या होता है? संपूर्ण आशाओं से मुक्ति मिल जाती, संपूर्ण कष्टों से मुक्ति मिल जाती। तो ऐसे जो गुरु हैं जो हमारी समस्त आशाओं को, समस्त कामनाओं को निवृत्त करने वाले, उन्हें प्रकाशित करते हुए और निवृत्त करने वाले हैं, और जो कैसे हैं? तो वास्तव में जिनका स्वरूप यथार्थ में चिदाकाश रूप है लेकिन वो उनकी निवृत्ति के लिए उपाधि को ग्रहण करने वाले, ऐसे उन गुरु को मैं नमस्कार करता। ये मंगलाचरण किया, और इस मंगलाचरण को करके ये तो ऋषि प्रणीत मंगलाचरण हो गया। अब वैदिक मंगलाचरण करने जा रहे, वैदिक मंगलाचरण करते हुए संकेत करते जिसे शांति पाठ शब्द करके कहते हो, तो वो शांति पाठ यहां क्या किया? तो ओम सन्नो मित्र शम वरुण सन्नो भवत्तर्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इत्यादि करके और संकेत कर, और फिर मैंने वक्ता श्रोता की रक्षा की प्रार्थना। तो अब यहां पर संकेत किया ओम, तो ओम जो है इसके दो रूप है, एक तो रूढ़ी ओम है और एक यौगिक ओम है। योग रूप। रूढ़ी ओम जिसमें उकार बना करके अनुस्वार रखते हैं वह रूढ़ी ओम बोला जाता। रूढ़ी का मतलब छांदस माने वेदकृत, जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता न परिवर्तन न संवर्धन कुछ भी नहीं किया जा सकता, अर्थात जो समस्त क्रियाकलापों से रहित है और जिसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया। क्या माना गया? प्रतीक। कहीं कहीं पर तो उसे ब्रह्म ही कह दिया। क्यों? प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म। प्रणव क्या है? कहा ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, ब्रह्म को लक्षित करने वाला है। तो ऐसा जो ओ, तो प्रणव शब्द का भी अर्थ कर दिया गया। प्रणव किसे कहते? तो प्राणान नामयति प्राणमयति इति प्रणव, जो हमारे प्राणों को नम्री भूज बना दे, जो हमारे प्राणों को झुका दे, उसका नाम क्या है? प्रणव। ओम के उच्चारण से हमारे प्राण कमजोर होते नम्र हो जाते हैं और ये नियम है। उपनिषदों में आप लोग सुनते रहते हो, इंद्रियों के विवाद में सर्वश्रेष्ठता किसकी सिद्ध हुई? तो प्राण की। तो प्राण के बल पर ही सारा कार्य होता है, चाहे मन हो बुद्धि हो चाहे इंद्रिय आदि हो, इन सबकी क्रिया किस पर निर्भर है? प्राण शक्ति पर। तो ऐसे प्राणों को झुका देने वाला कौन है? का ओम। और जब उनको झुका देता है तो हमारा मन भी नम्रीभूत हो जाता है और बुद्धि में भी नम्रता आ जाती है, इंद्रियों में भी नम्रता आ जाती है। और जब इनमें नम्रता आ जाती है, इनके विनम्री भाव में ही क्या होता है? तो आप कहते हो कि निर्मल मन। तो निर्मलता क्या? इसका विनम्र होना। उसमें ही इस तत्व का साक्षात्कार होता, उस प्रकाश का जो है साक्षात्कार होता या प्रकाश का अपरोक्ष होता। जब तक ये मन हमारा नम्रीभूत नहीं होता तब तक प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए यहां पर जो है ओम शब्द को लिया। अब यौगिक ओम क्या है? तो उसके अंतर्गत श्रुतियों में संकेत किया, अकार उकार मकार। पहले उसकी तीन मात्राओं को संकेत किया। मात्रा शब्द का अर्थ ही होता है मीयते इति मात्रा, जिसके द्वारा माप किया जाए, जिसके द्वारा नापा जाए, मान किया जाए, उसका नाम क्या है? मात्रा। तो अब जो है अकार मात्रा उकार मात्रा और मकार मात्रा, अकार उकार को लेकर के संगीता होने के कारण संधि हो गई और संधि हुई तो हार गुणा सूत्र से गुण संधि हो गई तो बन गया ओ, है ना। और नियम है कि अजीनम परेण संयोज्यम, जो व्यंजन स्वर से हीन होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पूर्व स्वर वर्ण में संयुक्त हो जाते। और ये भी नियम है कि बगैर स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं। तो इस प्रकार से मकार जो है संयुक्त हो गया तो बन गया ओम। अब ये ओम जो है यौगिक ओम, ये हमें क्या बतलाता? तो मात्राओं की कल्पना की। तो उस छांदस ओम से ही इस यौगिक ओम को ग्रहण किया और जब यौगिक ओम को ग्रहण किया तब वह यौगिक ओम क्यों ग्रहण किया गया? तो उसका तात्पर्य बतलाया, जिसे गायत्री मंत्र में संकेत किया ओम और आगे संकेत किया भूर्भुव श्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करके कहा। तो वहां कहा कि ओम, अब ओम से क्या समझे? तो वहां पर ओम को समझने के लिए, ओम में एक व्यवहारिकता लाने के लिए, व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए, अर्थात उसका अवबोध करने के लिए, उस ओम से ही उनकी मात्राओं से क्या किया, व्याहृति। और व्याहृति का मतलब ही है व्यवहार के लिए, व्याहृति निकली। तो व्याहृति क्या निकली, तो अकार मात्रा से भू नाम की व्याहृति, उकार मात्रा से भुवा नाम की व्याहृति और मकार मात्रा से स्व नाम की व्याहृति। ये तीन व्याहृतियां उससे तीन मात्राओं से निकाली। तो ये सब क्या है, ये माना ही तो है, मापना ही तो है। अब जब इसको लिया गया तो कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ, तब उसके तात्पर्य को बतलाया। भू शब्द जो है, जब भू को हम धातु अर्थ में लेते हैं, मूल अर्थ में ग्रहण करते हैं, तो संकेत किया गया भुआदयो धात्वा सत्ता वाची क्रिया वाचिनश्च। भू नाम की जो धातु मूल प्रकृति वो क्या है, का द्व्यर्थक है, उसके दो अर्थ है। एक तो उसका अर्थ है सत्ता और दूसरा अर्थ है क्रिया। जब हमने भू धातु को सत्तार्थक ग्रहण किया और सत्ता अर्थ ग्रहण करके भू जो शब्द बना, पद बना, आगे बतलाएंगे इसमें शिक्षा में, तो जब जो है हमने उस भू शब्द को जो भू धातु से ही निर्मित है और उसको ग्रहण किया, तो भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो भू शब्द का अर्थ हुआ भू माने पृथ्वी। भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, भू माने पृथ्वी। क्योंकि सत्ता अर्थ है तो सत्तार्थ का ही अर्थ होगा, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते, जो कारण के गुण हैं वही कहां आते, कारण। स्वर्ण जैसे आभूषणों का कारण है, तो स्वर्ण के अंदर जो तेजसत्व है, स्वर्ण के अंतर्गत जो पीतत्व आदि है, वो गुण कहां आएगा, उन आभूषणों में भी आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत किया। अब जो है भू शब्द का अर्थ सत्ता अर्थ लेकर के हमने भू शब्द का अर्थ किया भू माने पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, तो व्यावहारिक रूप से एक सत्तार रूप है, उसका उसकी सत्ता है। तो इसलिए सत्ता, और सत्ता किसकी होती, तो ये संकेत करती, क्या करती है कि जो सत्य पदार्थ, यहां पृथ्वी व्यावहारिक सत्य है, लेकिन यहां पर संकेत लेना है आगे पारमार्थ। तो अब जो सत्तार्थक पदार्थ होता है वो किसका संकेत करता, सत्य पदार्थ का संकेत करता। तो इससे भू शब्द से क्या निकला, भू शब्द का अर्थ हुआ सत पदार्थ। भू शब्द का क्या अर्थ हुआ, सत पदार्थ। अब आगे शब्द आया उकार से, हमने भुवा नाम की व्याहृति ली। भुवा शब्द का अर्थ क्या है, तो भावयत इति भुवा। अब ये क्रियार्थक हो गया, माने जहां पर भावना की जाए, जहां पर विचार किया जाए, और विचार किस में होगा, भावना कहां होगी, तो जड़ में तो होगी नहीं, मन में भी नहीं होगी, लेकिन मन भी करता तादात्म्य से, तो किस पदार्थ में होगी, चैतन्य में होगी, प्रकाश में होगी, जड़ता में भावना नहीं। चेतन पदार्थ में ही भावना संभव हो सकती, जड़ पदार्थ में कोई भावना नहीं होती। तो अब जो है भुवा शब्द जब क्रियार्थक लिया, तो भुवा शब्द कैसा हुआ, भावनार्थक है ना, विचारार्थक, और विचारार्थक हुआ तो वो विचार तो होता है चित्त प्रधान तत्व से। तो इसका मतलब क्या हुआ, भुवा शब्द ने संकेत किया माने चित्त पदार्थ, भू ने संकेत किया सत पदार्थ, भुवा ने संकेत किया चित्त पदार्थ। और इस प्रकार से जब सत और चित्त, ये दो शब्द हमारे सामने दो व्याहृतियों से आए, तीसरी व्याहृति जो है कही गई स्व। अब स्व शब्द जो है, शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते, कहीं स्व शब्द का ज्ञाति अर्थ है, कहीं स्व शब्द का आनंद अर्थ है, और इस प्रकार से स्व शब्द के कहीं पर जो है अपना अर्थ भी लिया जाता, तो इस प्रकार से उसके अर्थ है। लेकिन कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए, तो आप जानते हो संगति के अनुसार ही अर्थ को ग्रहण किया जाए। अब यहां पर हम अपना आदि अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो उतनी अच्छी संगति नहीं बैठती, लेकिन आनंद शब्द जो है सत चित के साथ में संगत होता, तो स्व शब्द का अर्थ क्या लिया, आनंद। तो सत चित और आनंद, सच चिच्च आनंदश्च इति सच्चिदानंद। ये द्वंद समास कर देने पर फिर क्या घटित होता है, सच्चिदानंद, तब अर्थ किया जाता है गायत्री मंत्र में ओम सच्चिदानंद परमात्मा, ऐसा लिखा देखते आप। तो ये सच्चिदानंद कहां से आ गया, ओम को सच्चिदानंद कैसे कहा? तो उसकी व्याहृतियों ने इस यौगिक रूप से इस चीज को बतलाया। तो ओम क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा। अब इतना बतलाने की बात, फिर आगे चले तो आगे क्या कहा? तत्, तत् शब्द का प्रयोग किया। भूर्भुवस्व तत्, तत् क्या है? तो हिंदी में जिसे वह कहते, तत् तद् जस्तु आदि हो के तद भी बनता, तो वह और वह जब संकेत करते तो वह माने कौन, तो उसका नाम ले देते। नाम क्या है? एक संज्ञा है। अब जहां पर संज्ञा का प्रयोग न किया जाए और उसके बदले में किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हो? सर्वनाम। तो वैसे ही यहां पर जो सच्चिदानंद संज्ञा दी गई उसका प्रयोग न करके और क्या प्रयोग कर दिया? तत्। तत् माने ओह, कौन? कहने लगे वही सच्चिदानंद परमात्मा। कौन? जिस ओम को, जिसको संकेत किया, वही सच्चिदानंद परमात्मा। तत् शब्द से हो गया क्या है? तो आगे संकेत किया सवितुः, वो सच्चिदानंद परमात्मा। ऐसा जब कहते हैं तो साकांश पद है, माने क्या? तो उसके लिए कहा सवितुः, वही सवितुः है। सवितु षष्ठी व्यक्ति का रूप, तो सवितु, सवित्री आप कहते हो सूर्य को, माने वही क्या है? सूर्य है, सविता है। तो सविता है से क्या मिलेगा? तो ऋग्वेद के भाष्य में संकेत किया सविता प्रसविता इत्यर्थ। ये सविता क्या है? कहने लगे यही सारे संसार का प्रसव करने वाला, सारे संसार की सृष्टि करने वाला सृष्टा कौन है? तो कहा सविता। इसलिए उसका नाम क्या रखा? कहा वही सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा, वही क्या है? सारी सृष्टि का सृष्टा है। यथले आप जानते हो जहां पंचभूतों को लेकर के पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए और संसार की सृष्टि को माना, वही प्रसुतियों के अंतर्गत सामवेदी आदि श्रुतियों के अंतर्गत छांदोग में चर्चा आई, तत् तेजो अब अन्ना दया सृजा। क्या संकेत किया? वहां आदित्य के प्रसंग को लेकर के चर्चा की, तत् माने उसी से, अर्थात किससे? उसी आदित्य से, उसी सूर्य से। क्या हुआ? तेजो अब अन्न आदि, तो तेज माने अग्नि, अब शब्द का रूप है तो माने जल, और अन्न पृथ्वी का वाचक है, वहां माने उसी से तेज अग्नि और जल और पृथ्वी ये तीन तत्व पैदा हुए, और तीन तत्व पैदा हो करके त्रिवदीकरण को लेकर इनको सूक्ष्मता के कारण जो है वायु और आकाश को वहां कथन नहीं किया, और वहां त्रिवदीकरण को लेकर के सृष्टि को स्वीकार कर लिया। कहां? श्रुति के अंदर, और भौगोलिक प्रक्रिया के अनुसार, वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार भी हमारे यहां चर्चा की जाती है कि सूर्य से टुकड़ा टूटा और वो नीचे आया, और नीचे आया तो नीचे आकर के फिर उसमें ठंडक आई, और ठंडक हादी आई, कहीं पर गर्म रहा, कोई भाग ठंडा रहा, तो सिकुड़न भी पैदा हो गई, तो कहीं दर्रे बन गए, झीलें बन गई, कहीं पर भाग उठ गया तो पर्वत बन गया, कहीं समतल भूमि हो गई, ये सारा होगा, ये निर्माण हुआ, और फिर उस पर वनस्पति आदि हो गई, और वनस्पति औषधि होकर के ये सारे प्राणी, सारी सृष्टि हो गई। ऐसा वैज्ञानिक भौगोलिकों का भी मत, तो इस प्रकार से वहां सृष्टि। इसलिए यहां संकेत किया कि तत् सवितुः, उसे सवितु को प्रतीक रूप से लिया, लेकिन कौन है मूल में? तो ओम सच्चिदानंद परमात्मा।